मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम् श्रुति स्मृति पुराणाना मालयम् करुणालयम् नमामि भगवत् पादं शंकरं लोकशंकरं शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमः शिवाय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमः शिवाय सच्चिदानंद भगवान की समुपस्थित तत्व जिज्ञासु भाइयों बहनों एवं माताओं, हमारा जो धर्म है वो सनातन है। सनातन कहते हैं जो कभी नष्ट न होवे। भगवान भाष्यकार सनातन शब्द का अर्थ चिरंतन करते हैं। जो देश काल और वस्तु से घिरा हुआ न हो और इस सनातन तत्व को प्राप्त करना ही मनुष्य जन्म का चरमोद्देश्य है, परमोद्देश्य है। हमारे वैदिक धर्म का तो मूल या मुख्य रूप से दृष्टिकोण ही इस सनातन तत्व को प्राप्त करना है। इसलिए वेद में जो भी अनुष्ठी तत्व बताया है उसका भी लक्ष्य सनातन की प्राप्ति है, आत्मा की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है। और गेय तत्व का जो वर्णन है उसका भी लक्ष्य सनातन तत्व की प्राप्ति है। इसलिए चाहे कर्म हो, चाहे उपासना हो, चाहे ज्ञान हो, ये साधन त्रय का उद्देश्य ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति है। जब तक मनुष्य ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त नहीं करता है तब तक वो दुखी ही रहता है। चाहे इहलोक के सभी साधन प्राप्त कर ले परलोक के भी कर्म के द्वारा स्वर्ग पितृलोक को प्राप्त कर ले, चाहे उपासना के द्वारा वो ब्रह्मलोक प्राप्त कर ले, किंतु जब तक ब्रह्म तत्व का अनुभव नहीं होगा तब तक ब्रह्म निर्वाण पद की प्राप्ति संभव नहीं है। ये जो मनुष्य जन्म हमको मिला है उस मनुष्य जन्म का लक्ष्य इहलोक के पदार्थ को इकट्ठा करना नहीं है या इहलोक के पदार्थ को प्राप्त करने में ही जीवन की इतिश्री कर ले, ये नहीं है। इहलोक के जो पदार्थ है उसको प्राप्त करके उसको मोक्ष में उसका विनियोग करें। और मोक्ष में विनियोग करने से अधिकारी क्षीण कल्मश हो जाता है। ब्रह्मानुभव के लिए सर्वप्रथम चाहिए होता है क्षीण कल्मश। जब तक मनुष्य क्षीण कल्मश नहीं होता है तब तक वो सूक्ष्म वस्तु का विवेचन करने में समर्थ नहीं होता है। और जब सूक्ष्म वस्तु का विवेचन करने में समर्थ हो जाता है तब जाकर के वो वेदांत का श्रवणादि करने का अधिकारी बनता है। और जब वेदांत का श्रवण करेगा अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा से लेकर अनावृति शब्दात पर्यंत जो चतुर्लक्षणी मीमांसा है उसका जब तक वो मनन नहीं करेगा तब तक जो है वो छिन्न द्विधा नहीं होता, संशय की निवृत्ति नहीं होगी। और संशय की निवृत्ति नहीं होगी तब तक वो निदिध्यासन करने में असमर्थ ही रहेगा। इसलिए निधिध्यासन के परिपाक से ही वो संयतात्मा हो जाता है और परमात्मा में उनका चित्त जो है एकाग्र हो जाता है और अद्वैत दर्शी हो जाता है। द्वैत दर्शन के अभाव में उनको सभी भूतों के अंदर एकमात्र आत्मा का ही दर्शन होता है और इस प्रकार का जो ब्रह्मविद है वो ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता के पंचमाध्याय के 25वें श्लोक में कही है। यद्यपि भगवान ने इससे पूर्व 24 और पश्चात 26वें श्लोक में भी आवश्यक लक्षण बताए ज्ञान के साधन, तो ये बात निश्चित है, ये वेदांत का सिद्धांत है कि कैवल्य जो मोक्ष है वो ज्ञान के बिना संभव नहीं है और ज्ञान साधन के बिना संभव नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस 25वें श्लोक में साधन बताए, उस साधन का अनुष्ठान ही ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त करा सकता है। भगवान ने वहां कहा है लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वेधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। भगवान ने सबसे पहले कहा कि ब्रह्म निर्वाण पद को लभन्ते यानी प्राप्त करता है कौन? प्राप्त करता है तो भगवान ने 5 साधन बताए। कितने? 5 साधन बताए, याद रखिए। सबसे पहले बताया साधन क्षीण कल्मषाः। श्लोक में चाहे क्रम कहीं भी हो, ये आप कहे पहले श्लोक में साधन कोई भी हो, तो सबसे पहला साधन है क्षीण कल्मषाः और दूसरा साधन है ऋषित्व। श्लोक में ऋषयः लिखा है कि नहीं? ऋषित्व, ऋषित्व, क्षीण कल्मषत्व, ऋषित्व और छिन्न द्वेध, छिन्न द्वेधत्व, ऐसा लीजिए छिन्न द्वेधत्व। और यतात्मत्व, ठीक, यतात्मत्व। और बताया सर्वभूत हित रतत्व। भगवान के कथनानुसार यदि ये जो 25वें श्लोक में कहे गए जो साधन हम अपने जीवन में उसको साकार करते हैं तो जीते जी ही ब्रह्म निर्वाण पद की प्राप्ति संभव हो जाती है। सबसे पहले बताया भगवान ने क्षीण कल्मषाः। भगवान ने कहा क्षीण कल्मषाः ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते। क्षीण कल्मषाः यानी कल्मष जिसके क्षीण हो चुके हैं। कल्मष समझ में आया ना? कल्मष यानी दोष। कल्मष का अर्थ होता है कीचड़, कलिलम। भगवान ने कलिलम भी कहा यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, ऐसा कहा है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यसि। तो ये जो है दोष है, वो दोष के कारण हम अपने स्वरूप को ब्रह्म रूप से अनुभव नहीं कर सकते। पारमार्थिक रूप से हम ब्रह्म रूप होते हुए भी उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हम अब्रह्म रूप है इसलिए, किंतु दोष के कारण ऐसा होता है, कलमश के कारण ऐसा होता है। और कलमश को हमारे यहां गिनाया गया है, मल, विक्षेप और आवरण, ये तीन कलमश है, दोष है। तो सबसे पहले मनुष्य को चाहिए कि मल नामक जो दोष है वो सर्वप्रथम दूर करे। वो मल जो है वो स्थूल दोष है, विक्षेप है वो मध्यम है, और आवरण है वो सूक्ष्म दोष है। और हमारे वेदों में मल दोष को निवृत्त करने के लिए कर्मानुष्ठान बताया है। और कर्मानुष्ठान से अभिप्राय है ये पूरा वर्ण और आश्रम का ढांचा। इसलिए हमारा जो धर्म है वो वर्णानुष्ठान, वर्ण और आश्रम मूलक है। वो इसलिए हमारे यहां कहा गया कि अनाश्रमी न तिष्ठेत। एक क्षण के लिए भी मनुष्य को अनाश्रमी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आश्रम धर्म का अनुष्ठान, वर्ण आश्रम का अनुष्ठान कलमश को दोष करने के लिए मुख्य साधन माना गया। ठीक है, वर्तमान काल में ये आपत्ति है, किंतु मनुष्य का स्वभाव जो है उसको तो बदला नहीं जा सकता है। चार प्रकार का जो मनुष्य का स्वभाव है वो तो आज भी है, और चार प्रकार का जो जीवन का संविभाग है वो आज भी है। वो उसको चाहे आप नाम कुछ भी दे दो, लेकिन गुजरना तो इसी से ही पड़ता है। लेकिन यदि परंपरा अनुसार, प्रमाण अनुसार यदि अनुष्ठान किया जाए तो वो कलमश को दूर करने का साधन बन जाता है। और ब्रह्मसूत्र में भगवान सूत्रकार ने एक विदुर अधिकरण का विचार किया। विदुर अधिकरण, विदुर अधिकरण के अनुसार वर्तमान काल में मनुष्य को चाहिए कि जो मनुष्य मात्र संबंधी जो कर्म है वो करने चाहिए, उससे कलमश दूर हो जाता है। हमारे यहां जैसे अभी कहा कि दो प्रकार के कर्म बताए, एक वर्ण और आश्रम संबंधी, वो तो जो व्यक्ति जिस वर्ण का है और जो आश्रम का है उनको ही वो करना होता है, और दूसरा है मनुष्य मात्र संबंधी, जो प्रत्येक मनुष्य के लिए कर्तव्य होता है। जैसे जप है, जप जप वो मनुष्य मात्र संबंधी है, सबके लिए वो कृत्य है। और जप के लिए बताया कि जपात नास्ति पातकम, पातक को दूर करने का सर्व सामान्य साधन जो सब कर सके, ऐसा यदि साधन है तो वो जप है। कलमश को दूर करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो रोज मंत्र जाप किया करे, और मनुष्य को करना चाहिए मंत्र जाप। गुरु द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है उसका जपानुष्ठान वो अत्यधिक प्रभावशाली है। भगवती श्रुति भी कहती है धर्मेण पापम अपनुदति, धर्म के द्वारा पाप का अपनोदन होता है। धर्म से अभिप्राय है मंत्र जाप, उससे हमारे अंतकरण के ऊपर जो मल नाम का दोष है वो जटिति दूर हो जाता है। और मंत्र जाप की भी विधि है, ऐसा नहीं आप चाहे जब करें चाहे जैसे करें, ऐसा नहीं। आजकल आप लोग जो है कईयों को ऐसे देखते हैं, हाथ में गोफनी लेकर के घूमते, ऐसा जप नहीं होता। आसिना संभवात, जो भी हमारे यहां साधना है वो बैठ करके करनी चाहिए, क्योंकि उसमें जप में स्थिर चित्त होना चाहिए। यद्यपि जप स्थिर चित्त के लिए है, जप से चित्त स्थिर होता है, चित्त को स्थिर करने का साधन जप है, लेकिन चित्त की जो दशा है वो जप की ओर तो होनी चाहिए, विरुद्ध तो न हो। यदि आप चलते चलते जप कर रहे हैं, कर रहे हैं जप और चल रहे हैं, तो जप क्यों कर रहे हैं? चित्त को स्थिर करने के लिए। जप चित्त को स्थिर करता है तो जप से अतिरिक्त जो अन्य चीज है वो भी चित्त की स्थिरता में अनुकूल हो जानी चाहिए। यदि आप चल रहे हैं तो वो विरुद्ध है, क्योंकि आप चलेंगे तब जो है बाहर जा रहे हैं, कहीं रोड पर जा रहे हैं, तो आपको मार्गान्वेषण बहुत जरूरी हो जाता है। और मार्ग का अन्वेषण करने के लिए चित्त जो है तदनुकूल होना चाहिए, और चित्त मार्ग अन्वेषण के अनुकूल नहीं है, चित्त जो है जप में लगा हुआ है तो क्या होगा? किसी के साथ टक्कर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो वो चित्त की स्थिरता के लिए विरुद्ध है। इसलिए आसिना संभवात, सारी अनुकूलता ये प्राप्त करके मनुष्य को चाहिए कि वो मंत्र जप करे। आप कहे कि सोते सोते करे, तो सोते सोते करेंगे तो नींद आ जाएगी। दिन भर से थके हुए हैं, सो गए, ऐसे ही सो गए तो भी नींद अपनी इच्छा से नहीं आती है। हम चाहे कि अब नींद आ जाए इस समय तो आता ही, कब आ जाती है पता नहीं चलता है, वो हमारे वश की बात नहीं है। इसलिए नींद आने की संभावना है, इसलिए बैठे सोते सोते भी नहीं होता, बैठे बैठे जप होना चाहिए। मंत्र जाप है, देवाराधन है, देवता का आराधन करें। और देवाराधन के लिए हमारे यहां कितनी सहूलियत है। देखो सनातन धर्म में देवता के किसी भी रूप का आप ध्यान कर लो, ये नहीं कि एक ही देवता का ध्यान या एक ही देवता की उपासना करे। हमारे यहां तो पांच देव की उपासना की जाती है, शिव विष्णु गणेश शक्ति और सूर्य की। और देवाराधन के लिए भगवान भाष्यकार ने साधन भी बताया। देखिए भगवान भाष्यकार की जो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारे यहां परंपरा से जितने भी देव और देवियां हैं, जिसकी पूजा उपासना चली आ रही है, उन सबकी उन्होंने स्तुति की है। आपको यदि लक्ष्मी जी चाहिए, लक्ष्मी जी के बिना तो किसी को चलता नहीं, तो सबसे पहले कहा जाता है कि भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्तोत्र की रचना की है। भगवान भाष्यकार बाल्यावस्था में जब किसी कोई वृद्धा के यहां भिक्षा लेने के लिए गए वृद्धा ने देखा कि मेरे घर में ये ब्रह्मचारी बटु भिक्षा लेने के लिए आया है, किंतु भिक्षा में देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। बड़ी दुखी हुई, भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आपके ये जो है प्रांगण में ये जो आंवला का पेड़ है उससे एक आंवला ही दे दीजिए सूखा। आंवला भिक्षा में पाया और वृद्धा की दरिद्रता से बड़े आर्द्र हो गए और उन्होंने लक्ष्मी जी की स्तुति कर दी। इसको कनकधारा स्तोत्र बोलते हैं और उसी के फल स्वरूप उस वृक्ष के ऊपर जितने आंवले थे वो सब सुवर्ण के कनक के हो गए। कनकभूषण माश्रयंती ऐसा हो गया। तो लक्ष्मी जी की स्तुति की, ऐहिक फल के लिए आप उसकी स्तुति करें या चित्त शुद्धि के लिए। यहां तो कोई सकाम कर्म की स्तुति नहीं है, मोक्ष के लिए तो निष्काम भाव चाहिए। सकामता तो खुद कल्मश है और मोक्षार्थी को चाहिए कि वो दोष को दूर करने के लिए देवाराधन करे, दोष को बढ़ाने के लिए नहीं। इसलिए हमारे यहां जितने भी देवताएं हैं उन सब की स्तुति परवर्ती आचार्यों ने तो अपने अपने जो है इष्ट की ही स्तुति की है, किंतु भगवान भाष्यकार के लिए कोई संप्रदाय का स्थापन मुख्य लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य तो वैदिक धर्म का पुनरुद्धार था, इसलिए वेद की जितनी विधाएं हैं उन सबको उन्होंने ठीक किया। और भगवान भाष्यकार के जो ग्रंथ है कृतियां है, उन सभी कृतियों को हमारे आचार्यों ने तीन भाग में बांटा है, स्तोत्र ग्रंथ, प्रकरण ग्रंथ और भाष्य ग्रंथ। इसको प्रस्थानत्रय भी बोलते हैं। सबसे पहले मनुष्य को चाहिए कि वो स्तोत्रादि से देवाराधन करे, उससे मंत्र जप वगैरह करे तो उससे विक्षेप, मल और विक्षेप दूर होगा। और चित्त जो है वो जैसे भगवान ने यहां पर दूसरा साधन बताया ऋषयः, ऋषि कोटि का हो जाएगा। यानी सूक्ष्म वस्तु का विवेचन करने में सामर्थ्य आ जाता है इससे। ऋषि शब्द का अर्थ होता है सूक्ष्म वस्तु के विवेचन में जो समर्थ हो उसको ऋषि कहते हैं। सूक्ष्म वस्तु की विवेचन का सामर्थ्य जो है वो देवता की प्रसन्नता से आता, इसलिए देवाराधन। और जब ऋषि कोटि आ गई, चित्त शुद्ध हो गया, मल और विक्षेप मानो दूर हो गया, तब शमदमादि साधन जो है वो उसके लिए व्यक्ति योग्य हो जाता है। शमदमादि साधन पुरस्सर सर्वकर्म का संन्यास वो कर देता है, फिर वो सन्यासी हो जाता है, वो परमहंस परिव्राजक भाव को धारण कर लेता है। और परमहंस परिव्राजक भाव को जो धारण किया है जिसने, वो वेदांत का श्रवण करेगा। संन्यास जो है वो वेदांत का श्रवण करने के लिए है। संन्यस्य श्रवणम कुर्यात्। यहां पर भी हम लोग जब वेदांत का श्रवण करने के लिए आते तो घर यदि साथ में लेकर के आए तो कर पाते, नहीं कर पाते। तो जितने समय हम स्वाध्याय करें उतने समय हमको घर की चिंता छोड़ देनी चाहिए, तब जाकर के ये होता है। इसलिए वेदांत का श्रवण व्यक्ति तभी कर पाता है जब वो सूक्ष्म वस्तु का विवेचन करने में समर्थ हो जाता है तब। और श्रवण से क्या होगा, छिन्न द्विधा होगा। भगवान ने तीसरा साधन बताया इस श्लोक में, छिन्न द्विधा। छिन्न द्विधा, छिन्न द्विधा का अर्थ होता है निवृत्त सर्व संशयाः। जो भी संशय है आत्मा के बारे में, रोज सुनते हैं कि हम आत्मा है लेकिन अनुभव तो हो रहा है कि मैं देह हूं, बताओ। देहात्म बुद्धि को दूर करना बड़ा कठिन होता है। अनंत जन्मों से देहात्म भाव चला आ रहा है, उसको झटिति दूर करना बड़ा कठिन है। इसलिए देह के अंदर अहम बुद्धि बनी हुई है, पूर्व की बात जाने दो, जन्म से लेकर अद्यावधि पर्यंत हमने देह को ही अपना स्वरूप मान रखा है। और शास्त्र कहते हैं कि देह स्वरूप नहीं है तुम्हारा, तो संदेह हो जाता है कि मैं देह हूं या देहातीत आत्मा, आखिर क्या हूं। तो ये संशय को वेदांत का श्रवण करने से दूर किया जा सकता। और जब सभी संशय जो है दूर हो जाएंगे तब वो जो है निदिध्यासन करने में समर्थ हो जाता है। वो निदिध्यासन करेगा और निदिध्यासन का जब परिपाक होगा, निदिध्यासन की जो चरमोत्कर्ष कोटि है जब वो सिद्ध होने के बाद संयतात्म हो जाता है वो। इसलिए इस श्लोक में ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति में चतुर्थ साधन बताया, यतात्मानः। वो यतात्मा हो, बहुवचन में यतात्मानः हो गया और एक वचन में यतात्मा होगा। यतात्मा देखो, इसमें आत्म शब्द का प्रयोग है, यतात्मा। यहां पर आत्मा से अभिप्राय है अंतःकरण, चित्त। देखिए हमारे शास्त्रों में ही आप पाएंगे देह के लिए भी आत्म शब्द का प्रयोग किया गया है, इंद्रियों के लिए भी आत्म शब्द का प्रयोग किया जाता है, अंतकरण के लिए भी, मन और बुद्धि के लिए भी आत्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो प्रसंग से हमको समझना होगा कि क्या कहां क्या लेना। तो यहां यतात्मा में जो आत्म शब्द का अर्थ है चित्त, यत यानी जो है एकाग्र कर लिया है जिन्होंने चित्त अंतकरण, उसको कहेंगे यतात्मा। किसमें यत का परमात्मनी, परमात्मनी एकाग्र चित्त है, परमात्मा में जिन्होंने कर लिया है एकाग्र चित्त उसको कहेंगे यतात्मा। और ये परमात्मा में एकाग्र चित्त का होना अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव है जो वेदांत के श्रवण मनन और निधिध्यासन के फल स्वरूप होता है। अब जब ये हो गया तब जो है स्थिति ये होती है कि द्वैत का दर्शन ही उसको नहीं होगा, द्वैतादर्शी हो जाएगा वो। और द्वैतादर्शी हो जाने से पांचवा विशेषण जो है वो संभव हो जाता है, पांचवा साधन जो है वो संभव हो जाता है। सर्वभूत हिते रताः कहा ना भगवान ने इस श्लोक में जो है पांचवा ज्ञान का साधन बताया, सर्वभूत हिते रताः, सर्वभूतों के हित में जो रत है यानी हिंसा से शून्य, सर्वभूत से केवल मनुष्य प्राणी नहीं लिया, स्तंभ से लेकर ब्रह्मा जी पर्यंत के जितने भी देहधारी जो जीव है जिसको भूत शब्द से कहा जाता है वो सर्व शब्द से ग्रहण किया जाएगा, यानी उसको सबके अंदर अपना ही स्वरूप दिखता है। जैसे अज्ञ अवस्था में हमको हमारे इस शरीर के जितने भी अंग है उस सभी अंगों में, या ये कहे कि संपूर्ण शरीर में हम अपने को पाते हैं कि एक एक अंग में पाते हैं, बताओ। आपको पूछा जाए कि आप इस शरीर में कहां पर है, माथे में है, हृदय में है, पैर में, हाथ में, कहां पर है, क्या बोलेंगे आप लोग? नक से लेकर शिखा पर्यंत संपूर्ण शरीर में हम अपने को पाते हैं। अतः होता क्या है कि पैर में कंकड़ चुभ जाए और उसी काल में कोई चोटी का बाल खींच ले, एक ही काल में दोनों कार्य एक ही काल में होए तो दोनों का अनुभव बारी बारी से होगा या एक साथ में होगा, क्या कहेंगे? एक ही साथ में होगा, क्योंकि हम अपने को पूरे शरीर में पाते हैं। पूरे शरीर में पाते हैं क्योंकि वो आत्मा व्यापक है, किंतु हमें शरीर अवच्छिन्न जो चैतन्य है उस चैतन्य को शरीर से आबद्ध कर दिया है, इसलिए हमने अपने आप को शरीर पर्यंत ही माना। किंतु जैसे ही देह का परिच्छेद यदि दूर हो जाए तो दूसरे के शरीर में भी आप अपने को पाएंगे। यह है सर्वभूत हिते रतत्व। नहीं केवल मैं अपने शरीर में हूं किंतु इस संसार के अंदर जितने भी भूत प्राणी है सभी के अंदर मैं ही हूं, इस प्रकार का जो अनुभव है। तो अब आप ही बताइए, हम इस समय अज्ञ अवस्था में हम अपने आप को इस शरीर में पाते हैं तो कभी दांत है वो जिह्वा को काट लेता है तो क्या आप दांत को गिरा देंगे क्या? नहीं, दांत का भी हित करेंगे और जिह्वा का भी हित करेंगे, पूरे शरीर का हित अपेक्षित है मनुष्य को। इस तरह से जब सभी भूतों के अंदर हम अपने आप को पाते हैं, तब किसकी हिंसा करेंगे, किसके प्रति हम द्वेष वैमनस्व रखेंगे। देखिए हमारे सनातन धर्म की पराकाष्ठा है, हमारे यहां कोई वैर जर ईर्ष्या देखा है को कोई स्थान नहीं है। ठीक है हम छोड़ नहीं पाते, लेकिन हमारे यहां इसकी कोई प्रशंसा नहीं है। सनातन धर्म जो है सभी भूतों के हित की बात करता, इसलिए सर्वभूत हिते रता है। ये जो पांच विशेषण भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताए, ये तो सबसे पहले है क्षीण कल्मषाः ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, और उसके बाद कहा ऋषयः ऋषयः ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, और तीसरा विशेषण बताया छिन्न द्वेदाः ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, और जो है कहा चौथा यतात्मानः ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, सर्वभूत हिते रताः ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते। तो ये जो पांचों विशेषण है वो एक दूसरे से साकांक्ष है। व्यक्ति जब जैसे श्रुति ने कहा है कि विविदिशंति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन, यज्ञ आदि जो बहिरंग साधन है, सत्कर्म है, सत्कर्म है, सत्संग है, जब मनुष्य करता चला जाएगा, करते करते उनका जो अंतकरण है वो कलमश से रहित हो जाएगा, तब जाकर को सब पहली अवस्था है क्षीण कलमशः, कलमश उनके क्षीण हो जाएंगे, वो भी निष्काम भाव से करेंगे। तो कई लोग कहते हैं हम तो स्वामी जी जन्म जब से होश संभाला तब से ये करते आ रहे हैं, लेकिन अभी कलमश दूर नहीं हुए कहते। तो देखिए आप लोग घबराइए नहीं, इसलिए कि ऐसा नहीं है कि ये सब एक ही जन्म में हो जाए। हमारे यहां तो आचार्यों ने कहा यह जन्मनी जन्मांतरे वाका, अनेक जन्म संसिद्धि ही ततो याति पराम गतिम। ये जो बहिरंग साधन है निष्काम कर्म का अनुष्ठान, वो जितना दोष बलवान होगा उतना ही जो है कर्म भी करना होगा। शास्त्र में एक सूक्ति है यक्षानुरूपो बलि ही, बलि दी जाएगी तो यक्ष को देख करके दी जाएगी, जैसा यक्ष है वैसे ही बलि दी जाएगी, यक्ष के अनुरूप बलि दी जाती है। तो हमारा अंतकरण जो है जन्म जन्मांतर से दूषित है। आप कहेंगे कि बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप सात रोटी खाने से पेट भरता है, आपने चार रोटी खा ली और फिर कहेंगे कि अरे ये रोटी में तो कोई दोष लग रहा है, मेरी क्षुधा निवृत्ति पूर्ण रूप से अभी तक नहीं हुई। यदि ऐसा कोई कहता है तो उसको ये समझना चाहिए कि रोटी में कोई दोष नहीं है, पेट की आपूर्ति सात रोटी से हो रही है तो चार रोटी से पूर्ण रूप से क्षुधा की निवृत्ति नहीं होगी। सात रोटी खाएंगे तब जाकर के जो है डकार आएगी और कहेंगे कि अब नहीं चाहिए। एक व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठा, उनकी पत्नी जो है गरम गरम रोटी दे रही थी, एक दो तीन दी, चार दी, पांच छह, सातवीं दी, तब कहा कि अच्छा अब हो गया क्षुधा की निवृत्ति। ये सातवीं रोटी तुमने मेरे को पहले ही दे देती होती तो छह रोटी बच जाती। ये पहले क्यों नहीं लाई तुम सातवीं रोटी? उस मूर्ख को यह पता नहीं है कि सातवीं रोटी से जो क्षुधा की निवृत्ति हुई वो छह रोटी के ऊपर हुई है। इस तरह से हम जो ये सत्कर्म करते चले जा रहे हैं उससे कभी थकना नहीं चाहिए। समझ लो कि अभी आवश्यक है, और जब उस कोटि तक सत्कर्म का अनुष्ठान होगा कि जब कल्मश दूर हो जाएंगे तब अपने आप जो है आप पाएंगे कि विवेक समर्थ हो जाएंगे, सूक्ष्म वस्तु के विवेचन में समर्थ हो जाएंगे, विवेक का उदय होगा, और विवेक का उदय होने पर अपने आप संसार से वैराग्य होगा और श्रमदमादि जो साधन संपत्ति है उसको करने में समर्थ होंगे और मुमुक्षुत्व भाव दृढ़ होगा, और उसके बाद जो है संन्यास ग्रहण किया जाएगा। उसके बाद वेदांत का श्रवण आदि साधन करते करते ये जो है ये ब्रह्म निर्वाण जो है पद है जो भगवान ने यहां पर कहा है, उस ब्रह्म निर्वाण पद को जो है प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए ये ब्रह्म निर्वाण पद की प्राप्ति मनुष्य जन्म का चरमोद्देश्य है। उसके लिए मनुष्य को क्षीण कल्मश से जो सर्वभूत हिते रता तक का जो साधन है उस साधन का अनुष्ठान मनुष्यों को करना चाहिए। इसी से ही मनुष्य शरीर की जो है सिद्धि है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य धर्मानुष्ठान है, कर्मानुष्ठान है, और अंत में मोक्ष है, नहीं कि भोग। भोग की जहां तक बात है तो भोग तो कीट पतंग आदि के शरीरों में भी, जैसा मनुष्य जो भोग पाता है ना वैसे ही वो भी पाते हैं। आहार आदि चार लाभ जो है वो एक सामान्य कीट को भी मिलता है। वो कहीं भी कमाने नहीं जाता, कहीं भी फैक्ट्री नहीं खोलता, फिर भी उसको आहार मिल जाता है, फिर भी वो बढ़िया से सोता है, उसको भी संतति होती है, वो भी अपनी परंपरा का निर्वाह करते हैं। तो एक कीट पतंग आदि से लेकर बड़े बड़े जो हाथी है उन सबको बिना कमाई भोजन मिल जाता है। इसलिए मनुष्य केवल जो है इसी में रत रहे तो इससे मनुष्य जन्म का जो है लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा। मनुष्य जन्म का लक्ष्य यह है कि वो अपने को जन्म और मृत्यु से निवृत्त कर दे, और इसी के लिए वेदांत का जो है ये श्रवणादि साधन है उसको करते रहे। इसी से ही परमोद्देश्य की प्राप्ति होती है। भगवान सबको सब प्रकार से उसमें सन्मति प्रदान करे, अनुकूलता प्रदान करे, यही भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना है। ओम तत्सत।